यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहित बनाया था किंतु ये क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। आज माधवाचार्य जी की भी आविर्भाव तिथि है और इस प्रसंग में माधवाचार्य जी परशु क्षेत्र में अपना लीला किए थे। तो परशुराम जी भगवान की एक अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। उन्होंने इस धरती में जो अन्याचारी राजा थे उनको 21 बार परास्त करते हुए इस धराधाम को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे और इतना पराक्रमी परशुराम स्वयं राम जी से परास्त होने के बाद स्वीकार किए, हे भगवान आप स्वयं परम सत्य हैं। अपनी पत्नी को दिए गए वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य ऐश्वर्य मित्र शुभचिंतक निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब ये सीता सहित जंगल में चले गए। इस दुनिया में कोई कितना भी बड़े हो, किसी तरह किसी की प्रसंग में बंधन में आदमी फंस जाता है ना चाहते हुए भी। जैसे कि हम देख रहे हैं दशरथ जी अपनी पत्नी को दिए हुए वचन से बंधे गए, ऐसे ही हम सब। ऐसे तो दशरथ भगवान रामचंद्र की शाश्वत पिता है, नित्य परिकर हैं, परंतु हम लोग बद्ध आत्मा हैं। माधवाचार्य जी की आज आविर्भाव तिथि हैं। पहले उनकी आविर्भाव के पहले शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन को सारे भारतवासी स्वीकार करते थे और उसमें पता नहीं था कि एक बद्ध जीव की कोई व्याख्या होता है, बद्ध जीव की कोई तत्व भी लोगों को पता नहीं था। जीव बद्ध होता है, जीव मुक्त होता है, ऐसे कुछ नहीं था। हैं, जब हम अपने आप को मुक्त कर देते हैं हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। ये अद्वैत दर्शन था और माधवाचार्य जी की ये एक परम देन है वैष्णव दर्शन के लिए कि इन्होंने बड़ी कष्ट स्वीकार करते हुए लोगों को समझाया कि इस धराधाम में हम सब बद्ध जीव हैं और जब तक हम भगवान विष्णु की चरणों में अपने आप को समर्पित ना करें तब तक हमारी जो बंधन इस दुनिया में है वो चलता रहेगा। इसके बारे में भी आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही दशरथ जी बंधन थे और दशरथ जी को वचन को अपनी पिता की वचन को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र सब कुछ त्याग देकर जंगल चले गए। जंगल में घूमते हुए वहां पर उनके कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथों में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला जिनमें खर निशीर त्रिशीर तथा दूषण मुख्य थे। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में वाद किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में उस तरह भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी को वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखते हैं अपना शिष्य को कि रावण ने सन्यासी बनकर माता सीता की अपहरण की थी क्या था। अब देखिए रावण जो है महापंडित ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, हर चीज में पारंगम था, परंतु अपनी अंदर जो बुराई है उससे वो मारा गया। तो इसलिए हमारी दर्शन की जो सार मर्म है, हमारी शत्रु हमारी अंदर है, मेरा दिल में बैठा है, मेरा मन में बैठा है, मेरा शरीर में बैठा है, बाहर नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को रावण की उदाहरण देते हुए बोला रावण जैसे सन्यासी मत बनो। सन्यासी बनना है चैतन्य महाप्रभु जी की उदाहरण देखो। चैतन्य महाप्रभु कैसे सन्यास बने थे उसका ध्यान करो। तो ये तो हम जानते हैं कि माया सीता की अपहरण हुआ नहीं था। जैसे जब दाक्षिणात्य गस्त में थे, चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण को मिले, ब्राह्मण ने महाप्रभु को भोजन में बुलाए थे, मध्यान्ह भोजन। और जब महाप्रभु पहुंच गए नहाकर स्नान करते हुए अपनी संध्या मध्यान्ह संध्या की जितने सारे रिचुअल है उसको समाप्त करते हुए पहुंच गए ब्राह्मण की कुटीर में, देखे कुछ नहीं हुआ है। तो ब्राह्मण ने देखा महाप्रभु पहुंचे हैं, बोले आप थोड़ा सा इंतजार करिए, लक्ष्मण जी गए हैं जंगल और कुछ मूल फल लेके आएंगे, और जब आएंगे तो हम उसका रोसई करेंगे फिर आपको देंगे भगवान को भोग लगाकर। तो महाप्रभु को बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि ब्राह्मण जो है हर समय भगवान की लीलाओं में लीन था, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित किया था। तो जैसे ही भगवान की लीलाओं को वो स्मरण करता था ऐसे ही उसकी भावना में उसकी भावना उस लीलाओं के साथ एकत्र हो जाता था। तो उस 12 बजे के समय है तो सीता मई कुटिया में लक्ष्मण जी की अपेक्षा कर रही है कि लक्ष्मण जी कुछ आएंगे तो फिर व्यंजन बनाएंगे, फिर भगवान राम को अर्पण करेंगे। तो ये ब्राह्मण की ये जो भावना को देखते हुए महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद भोजन किए महाप्रभु। भोजन करने के बाद ब्राह्मण को बोले आप भोजन क्यों नहीं करते हैं। तो ब्राह्मण ने बताया नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, बड़े रुख होकर बोले। तो फिर राम चैतन्य महाप्रभु पूछे क्या हुआ है, ब्राह्मण ने बताया कि ये दुष्ट रावण सीता माया को कैसे अपहरण कर लिया, ये संभव है क्या? और मैं जब इसकी बारे में सोचता हूं मुझे भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, क्योंकि मैं इस कार्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर महाप्रभु ने उनको समझाया कि सीता मई हर समय भगवान के वक्षस्थल में विराजमान है, उनको कोई है नहीं कि जो उनको स्पर्श कर सके। तो फिर रावण किसको अपहरण किया? तो महाप्रभु ने बताया कि जी लक्ष्मण ने जो रेखा लगाई थी वो अग्नि रेखा थी। इसकी अर्थ है सीता मई को अग्नि का अग्नि को सौंप कर, मीन्स इन द केयर ऑफ द फायर गॉड लक्ष्मण केप्ट मदर सीता एंड लेफ्ट, क्योंकि अग्निदेव सीताजी की सुरक्षा में थे। जैसे ही रावण ने सीताजी को अपहरण करने के लिए कोशिश किया तो अग्नि जी अपनी पत्नी की गोद में सीता को रखें और जो सीता बाहर गई वो है माया सीता। तो ऐसे बोलते हुए सांत्वना दिए महाप्रभु उस ब्राह्मण को, फिर उस ब्राह्मण भोजन किए। उसके बाद महाप्रभु चले गए। आपको पता होगा कि एक गांव में एक ब्राह्मण शासन था जहाँ पे ब्राह्मण लोग कुर्म पुराण को पढ़ते थे। उस कुर्म पुराण में ये जो लीला है कैसे सीता देवी को रावण ने अपहरण नहीं किया था, यानी कि माया सीता को अपहरण किया था, उसका विस्तार वर्णन था। तो महाप्रभु उसकी कॉपी करके लिखित रूप से उसको लेके आए। जैसे वो फिर वापस आ रहे थे उस ब्राह्मण को मिले और उस लेख को ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और महाप्रभु को प्रणाम किया। तो इसके बारे में बहुत सारे ऐसे लेख भी हैं। भगवान रामचंद्र जी जिसके चरण कमलों ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित है मनुष्य का रूप धारण किया था, अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कवन नाम का असुर को मारा और वानर राजाओं से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी को छुड़ा लेने की व्यवस्था करके ये समुद्र की तट पर गए। तो ऐसा लग रहा है कि महाप्रचरी रामचंद्र जी की लीला जो है एक मनुष्य की लीला है, ऐसा नहीं है। इसकी एक वर्णन है जैसे कि उस समय भगवान शिव सती को, भगवान की जब लीला चल रहा था सती को भगवान ने बोले कि भगवान शिव ने बोले कि मैं राम जी अभी दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं और मैं मेरा प्रभु को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो सती ने बोला कि वो तो सामान्य पुरुष है, एक सामान्य पुरुष जैसे जैसे अपनी स्त्री को खोते हुए एक सामान्य पुरुष जैसे रोता है ऐसे ही वो रो रहे हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो फिर भी भगवान शिव जी ने सती को बताया नहीं, ये स्वयं भगवान हैं जो कि राम की राम जी की लीला कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। तो भगवान शिव जी गए, परंतु सती को थोड़ा सा संदेह था कि ये स्वयं सचमुच क्या भगवान है जो कि एक सामान्य मनुष्य जैसे रो रहे हैं। तो फिर सती ने अपने आप को सीता की रूप में पहुंच गए उधर, और भगवान जैसे ही अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं अपनी उनकी समक्ष में आ गए। तो फिर राम जी देखे भी नहीं, अपनी लीला जैसे कर रहे थे ऐसे ही किए, और जैसे देखे कि राम जी की कोई विकार नहीं आ रहा है उनको देखते हुए, तो फिर स्वयं उनकी सामने आ गए और बोले मैं ही सीता हूं, आप जिसकी धन ये कर रहे हैं तलाश में हैं। तो फिर राम जी बोले कि शिव जी तो मेरा प्रदक्षिण करके चले गए, आप इधर क्यों हैं? तो फिर सती जी को ये पता चला कि ये स्वयं भगवान है, और अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान को प्रणाम करके फिर वापस गए। तो ऐसे बहुत सारे कथा हैं पुराणों में जिससे पता चलता है कि भगवान राम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम। तो लोग जब भगवान स्वयं आते हैं लगता है कि क्योंकि मनुष्य को दिव्य धाम को लेने के लिए भगवान मनुष्य की शरीर में, मनुष्य की शरीर में नहीं, मनुष्य जैसे लीला करते हैं और हमें लगता है कि ये मनुष्य है, परंतु मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। परंतु मूर्ख जो है अवजानन्ति, समझ नहीं पाते हैं ये स्वयं भगवान है। तो ऐसे ही भगवान मनुष्य जैसे लीला किए, वानर सेनाओं के साथ मिलकर अब पहुंच गए रामेश्वरम में लंका यात्रा के लिए। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र की आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब डर के मारे शरीर धारण करके समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उससे भगवान की चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। ऐसे देखेंगे समुद्र, स्वयं समुद्र जो है भगवान की ससुर है। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण ये नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतगुण से, प्रजापति रजगुण से तथा भूतों की इस तमगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों की स्वामी हैं। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं, निसंदेह आप इसे पार करके इस रावण का पूरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। ये विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है, कृपया जाकर उसकी वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपका लंका जाने की कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप उसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश को विस्तार करें। आपकी इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा को गान करेंगे। तो समुद्र ने बोले कि आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं रहेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर पुल बनाएं। क्योंकि आप अगर पुल बनाएंगे, आने वाला पीढ़ी आपकी गुणगान करेगा उस अद्भुत लीला को स्मरण करते हुए। क्योंकि भगवान की लीला जो है हर समय दिव्य होता है, कुछ छोटा भी चीज करते हैं वो दिव्य होता है, क्योंकि भगवान संपूर्ण रूप से दिव्य है। वो धनुष बाण को उठाते हैं, सूर्पणखा की कान नाक को काट देते हैं, खर धूषण जैसे उनकी साथी 14,000 को वध करते हैं, रावण को वध करते हैं, हैं बाली को वध करते हैं, ये सब दिव्य लीला है। और इस लीलाओं को स्मरण करने से बद्ध जीव को इस धरती से, इस मृत्यु से छुटकारा मिलता है। 2003 में नासा ने फोटो लिया था भारत महासागर की, जहाँ पे ये जो पुल है उस पुल की संपूर्ण चित्र जो है उसको उठाया था, बड़ी पावरफुल कैमरा था। और उसको हमारा जो भारतीय विज्ञान जो इंस्टीट्यूट है वो भी उस फोटो को अपनी आर्काइव में रखा था, मैंने उससे डाउनलोड किया था और बहुत सारे लोगों को उसको मैं वितरण किया था। और 2004 आई थी मेरा ख्याल में, परंतु कुछ सेकुलरिस्ट जो होते हैं, एथेइस्ट होते हैं, उन लोगों ने इसकी आपत्ति किया, तो फिर भगवान भारत सरकार ने उसको हटा दिया। परंतु वो सेतु है, ये सेतु सत्य है, दिव्य भी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बनाए थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्षों बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी के रावण को चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि बानर सैनिकों को साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिससे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। इसका अर्थ भगवान रामचंद्र लंका पहुंचने की पहले ही हनुमान जी उधर जाकर लंका को जलाकर राख करके आ गए थे। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि बानर सेनापतियों की नेतृत्व में बानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अर्न के गोदाम, खजानों, महलों की द्वारों, नगरों की फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घर में अधिकार कर लिया था। जब नगरी की सारे चौरा चबूतर झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वंस्त कर दिए गए, तो समूची लंका नगरी उस नदी की सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों की झुंड ने मथ दिया हो। जब राक्षसपति रावण ने बानरों सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा, तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसका अर्थ है सबकी हत हो गया, एक एक करके सबकी हत्या हो रहा है भगवान राम जी की सैनिक द्वारा। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए उकसाया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जांबवान तथा पनस नामक बानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों को पर आक्रमण कर दिया, जो विविध अजय हथियारों से अथा तलवार, भालों, बाणों, प्रासों, रुष्टियों, शक्तिवाणों, खड़गों तथा तोमरों से सज्जित थे। अंगद तथा रामचंद्र की अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं को हथियों, पैदल सैनिकों, घोड़े तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाणों फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी की सैनिकों ने रावण की सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लूट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी की क्रोध से रावण पहले ही हरासित हो चुका था। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिकों मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतएव ये अपने विमानों में सवार हुआ, जो फूलों से सजाया हुआ था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, जो इंद्र की सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाण की वर्षा की। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत घृणित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वो घर के मालिक के ना होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। क्योंकि रावण ने वही किया था, कभी कभी रसोई के घर में कुत्ता आ जाता है जब रसोई घर में कोई नहीं होता है। इसी तरह रावण ने जब नाल लक्ष्मण थे और स्वयं रामचंद्र थे, उस समय रावण ने सीता जी को अपहरण किया था। तुमने मेरी अनुपस्थित में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा बार कभी खाली नहीं जाता। इस प्रकार रावण को धिक्कारते बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय, क्या हो गया? क्योंकि रावण अपनी 10 मुखों से रक्त बमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्य की चूक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। बोलिए सीतापति श्री रामचंद्र की जय। तो रावण की वध आज हुआ, ये विजयदशमी है, श्री रामचंद्र विजय उत्सव है, रावण की वध हुआ। रावण की 10 मूर्ख मुख जो है हमारी अंदर की 10 गंदगियां को प्रतीत करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसको शिरच्युत करते हुए भगवान हम बद्धात्मा को कह रहे हैं कि मैं आप सबको मुक्त आत्मा बना सकता हूं अगर आप लोग मेरा शरण में आओगे। भगवान की दिव्य लीलाओं को वर्णन करना, उसको सुनना, उसकी दिव्यता के बारे में समझना, और समझने के लिए अपनी जो योग्यता है उसको परखना, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए ज़्यादातर हमारे पास योग्यता नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम सुन सकते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान की दिव्यता को सुनने के लिए हमारी अंदर जितने सारे खूबियां हैं, जितने सारे दुर्गुण हैं, वो सब की हत होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे जब तक दुर्गुण हैं, भगवान को लीलाओं को श्रवण करने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं रह सकता है। तो इसीलिए आज के अवसर पर हम अभी 5-10 मिनट सुनेंगे माधवाचार्य के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान की जो प्रतिनिधि होते हैं आचार्य, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जब ब्राह्मण लोग वेद को साक्षी मानकर पशुओं की बलि किए, पशुओं की हत्या किए, पशुओं की मांस भक्षण किए, तो भगवान अपना सत्यावेश अवतार बुद्ध देवी के रूप में आए और बोले कि एक संसार की स्थिति है नहीं, कुछ भी है नहीं इस दुनिया में। हम जो देख रहे हैं उसका स्थिति ही नहीं है। अगर स्थिति नहीं है, कोई चीज है नहीं, इसका अर्थ भगवान है नहीं। आप समझ रहे हो ना, भगवान बुद्ध जी जो तत्व को स्थापित किए, वो तत्व ये है निहिलिज्म, शून्यवादी। शून्यवाद के अर्थ है कुछ है नहीं। असलियत में जैसे कि हम सोचते हैं मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये संसार है, परंतु अक्ष की अस्तित्व है नहीं। तो भगवान बुद्ध ने इसको स्थापित किया, इस तत्व को, कि इस दुनिया में कुछ है नहीं। क्योंकि कुछ है नहीं तो भगवान भी है नहीं। जब भगवान है नहीं तो वेदों की कोई जरूरी नहीं। परंतु इनकी जो मूल लक्ष्य था पशुओं की हत्या को रोकना, पशुओं की हत्या को रोकना, क्योंकि मनुष्य का अगर इतने भी पता नहीं तो आगे जाके धर्म आचरण कैसे कर सकता है। तो तत्व इसीलिए बहुत बड़ा बलशाली होता है। जब तत्व नहीं होता है, कुछ भी करें वो सेंटिमेंटलिज्म हो जाता है। तो भगवान बुद्ध की जो तत्व जो था उस समय, कि इस दुनिया में कुछ है नहीं, जो भी हम देख रहे हैं वो है नहीं, इसका अर्थ कुछ की कोई भी चीज की अस्तित्व नहीं है, सब कुछ भ्रम है। तो क्योंकि वेदों की खंडन किया गया, वेदों की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान की जरूरी नहीं है, कोई है नहीं तो भगवान की जरूरी नहीं है, इसीलिए आदि शंकराचार्य की आगमन हुआ। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने बोले हाँ कुछ है नहीं, जगत मिथ्या है, कुछ है नहीं, परिवार झूठ है, घर झूठ है, संसार झूठ है, सब कुछ झूठ है। झूठ होते हुए कुछ है, कुछ है, इसलिए कुछ भ्रम लगता है। वो क्या है ना, वो ब्राह्मण है, तो उसको हम कैसे जाने ना। मैं जब जो है जिसको मैं सत्य मानता हूं उसको जब मैं भ्रम समझ जाता हूं, उस भ्रम से मैं जब अपने आप को मुकुलित कर देता हूं, तब उस ब्राह्मण को मैं महसूस कर सकता हूं और मैं और वो ब्राह्मण एक है, अद्वैत है। तो ये आदि शंकराचार्य की अद्वैतवाद था। तो उसमें सारे बुद्धिस्ट जो थे, भगवान बुद्ध की जितने सारे अनुयायी थे, सबको पराजित करते हुए भारतवर्ष की दाक्षिणात्य से उत्तर तक, उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक नंगे पैर घूमते हुए सारे बुद्धों, भगवान बुद्ध की जितने सारे अन्याय को परास्त करते हुए वेदों की सुप्रीमेसी जो है उसकी ही एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ वेदा। तो ये है आदि शंकराचार्य, स्वयं वैष्णव है मगर भगवान की इच्छा अनुसार कुछ लीला कर रहे हैं वो। तो जब सारे दुनिया, सारे भारतवर्ष अद्वैतवाद में डूबा हुआ है, उस समय ये बोलना कि जीव अलग है, भगवान अलग है, द्वैतवाद को, उस तत्व को सबके सामने लाना सबसे बड़ा कठिन काम था। कहा जाता है क्योंकि माधवाचार्य के पहले रामानुजाचार्य ने जो तत्व को प्रचार किया उसको कहा जाता है विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत में क्या है, ना ब्रह्मन सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य है, परंतु ब्रह्मन की कोई रूप नहीं है, ब्रह्मन की कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। परंतु रामानुजाचार्य ने यह बताया नहीं, ब्रह्मन की दिव्य गुण है, ब्रह्मन की दिव्य रूप है। तो उनका तत्व को बोले विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत को प्रचार करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल था द्वैतवाद को, जो कि माधवाचार्य ने प्रचार किए थे। बड़ा मुश्किल था यह बोलना कि जीव संपूर्ण रूप से अलग है भगवान से, जीव जीव है, भगवान भगवान है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप देखेंगे, माधवाचार्य के लिए अपनी तत्वों को प्रचार करना सबसे बड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट माधवाचार्य जैसे ही चैतन्य महाप्रभु एक शंकराचार्य की अनुयायी सन्यासी से दीक्षा लिए थे, ऐसे ही रामानुजाचार्य भी दीक्षा लिए थे एक अद्वैतवाद सन्यासी से। माधवाचार्य की उनकी भी गुरु ऐसे अद्वैतवाद थे, परंतु अपना गुरु का जो तत्व को खंडन करते हुए माधवाचार्य वैष्णव दर्शन को प्रस्थापित किए, उन्होंने स्वयं 8 साल में उनकी आविर्भाव जो है उडुपी, अभी आप जानते होंगे कितने लोग गए हैं उडुपी, बहुत कम, यह आश्चर्य है। उडुपी जरूर जाना चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है जब हम उडुपी में पहुंचते हैं। हर दिन कम से कम 1,00,000 लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, भगवान के प्रसाद दिया जाता है। उधर श्री कृष्ण मठ है, उस श्री कृष्ण मठ के दायित्व के लिए 8 मठ की उपस्थापना किए थे माधवाचार्य ने। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिए थे और अपनी गुरु की जो तत्व को खंडन करते हुए उन्होंने द्वैत दर्शन की उपस्थापना किए थे। और भारत के हर कोण में जाकर अपनी दर्शन की प्रचार किए थे। ऐसे जाते जाते उन्होंने बद्रिकाश्रम भी पहुंचे, बद्रिकाश्रम में उन्होंने बद्रिकाश्रम में रहते हुए उन्होंने भगवद गीता की ऊपर टिप्पणी लिखे। लिखने के बाद और भी उत्तर गए, जैसे उत्तर गए व्यासदेव जी को मिले और उनसे दीक्षा लिए, अपनी भगवद गीता की जो व्याख्या है उनको दिखाए, तो व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए उनकी व्याख्या को देखकर और उनका आशीर्वाद किए कि आप विजयी भवो। तो व्यासदेव जी की शिष्य तो प्राप्त करने के बाद स्वयं पूर्ण प्रज्ञ के रूप में आकर दाक्षिणात्य में भगवान कृष्ण की जो भक्ति को प्रसार किए। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे उनकी जो 9 प्रिंसिपल है वो हमारी चैतन्य महाप्रभु की जो दिए हुए 10 मूल जो स्तोत्र है उसकी बराबर है। मैं इसको पढ़ के मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहला उनकी तत्व था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। सारे वेदों की जो लक्ष्य है इस भगवान को जानने का, जब भगवान कृष्ण है सारे वेदों की लक्ष्य। तीसरा है इस दुनिया जो है मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने और आदि शंकराचार्य ने बताया थे इस दुनिया भ्रम है, मिथ्या है। परंतु ये बोले ये दुनिया जो है भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी मीन्स बहिरंग शक्ति, मगर दुनिया की जो प्रकट है वो असत्य है, टेम्पररी है। तो इसकी बारे में बताएं। फिर चौथा जो है भगवान और जीव संपूर्ण रूप से अलग है। जीव क्षुद्राते क्षुद्र है, भगवान असीम है और ये इनकॉन्सीवेबल पर्सनालिटी है। ये दिव्य पुरुष है परंतु उनकी दिव्य पुरुषता जो है वो अचिंत्य है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं। और ये जो माया शक्ति है भगवान की, जो भिन्न भिन्न रूप में हमारी सामने आ जाता है, कभी हमारी घर के रूप में, कभी हमारा पत्नी के रूप में, कभी हमारा पति के रूप में, कभी हमारा भिन्न भिन्न रूप में आ जाता है, ये माया की भिन्न भिन्न रूप है हमें भ्रमित करने के लिए। फिर छठा उनकी जो मंत्र था, शिक्षा था, अनुशासन था, यह है जीव जो है, जीवों में 2 प्रकार जीव हैं, एक मुक्तात्मा है और एक बद्धात्मा है। ये पहला बार लोगों को पता चला एक बद्धात्मा होता है। मीन्स ज्यादातर हम सब बद्धात्मा है, कई कई अनादि काल से हम अनादि शरीर लेकर घूम रहे हैं इस दुनिया में हैं, और अभी तक हम भगवान की कृपा जो है इसको स्वीकार किए नहीं है, इसीलिए अभी तक इस शरीर में, इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं करोड़ों करोड़ों शरीर लेते हुए। सातवां जो है उनकी शिक्षा है लिबरेशन। पहले लिबरेशन का अर्थ था ब्रह्मन में लीन हो जाना, मगर इन्होंने बोला लिबरेशन जो है मुख्य जो है भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान की चरणों को प्राप्त करना। हाँ, इसका अर्थ है भगवान की साथ एक संपर्क में बंधन हो जाना, ताकि भगवान के साथ हमारा एक संपर्क है, हमारा एक संबंध है, उस संबंध को प्राप्त करना। आठवां जो है जी संपूर्ण रूप से भक्तिमय सेवा भगवान के लिए जो है यही एकमात्र साधन है भगवान को भक्ति को प्राप्त करना, भगवान को चरणों को प्राप्त करना। और नवमा जो है शिक्षा जो है, ये जो सत्य जो है भगवान के बारे में, जो हम सत्य को जो उपस्थापित किए हैं, इस सत्य को हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये तीनों से हम इसको जान सकते हैं। तो भगवान की भक्ति में इस सेवा जो है, ये जो सिखाए थे कुछ 2005 यानी 2006 और 2007 में पेजवार स्वामी आए थे, वृंदावन आए थे, इस्कॉन में रहे थे, यहीं पे यहीं कृष्ण बलराम हॉल में हर दिन प्रवचन भी करते थे। एक बार वो यहीं पे बैठे हुए प्रवचन देते हुए बोल रहे थे कि हम सब धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं और अपने आप को घोषणा करते हैं दुनिया के सामने, हम भगवान की भक्त हैं, परंतु धोती कंठी माला पहनते हुए हमारी मन में हर समय हर तरह की गंदगी वो फैलता रहता है, सोच गलत रहता है। तो उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किए थे जो कि गोविंद दामोदर स्तोत्र में है, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोहोवसात अवचोत गोविंद दामोदर माधवेति। तो उन्होंने बताए थे ये वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, यहीं पे भगवान ने 5000 साल पहले जो लीला किए थे गोपियों के बीच में, गोपों के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में जो लीला किए थे, तो इसमें गोपी जो हैं ये तो सब वैश्य के घर में थे, तो जितने सारे मिल्क प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए बाजार जाते थे, दध्यादिकम। तो बिक्रेतु कामा बेचने के लिए गए थे मार्केट में, बेचने के लिए तो गए हैं, परंतु मुरारी पादा अर्पित चित्त वृत्ति, इनकी मन जो है हर समय भगवान की चरणों में था। तो मार्केट में पहुंचने के बाद ये नहीं कहे कि दधी लो, दही लो, संदेश लो, परंतु ये लोग भगवान की नाम जोर से पुकारने लगे, गोविंद दामो दरो माधवे थी। तो ये माधवाचार्य जी की शिक्षा है, उनकी जो अनुयायी है इनकी शिक्षा है, माधवाचार्य इनकी जो परंपरा और हमारी जो इस्कॉन के बीच में बड़ा घनिष्ठ संपर्क है, बड़ी मैत्रता है। और जब हम जाते हैं उडुपी, इनकी जो संत लोग हमें बड़ी प्यार से हमें अभिनंदन करते हैं, तो इस अवसर पर हम लोग ये अवश्य तय करना चाहिए, टुडे टू डेज वेरी इम्पोर्टेंट डे। एंड एक तो है हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान रामचंद्र, जैसे आप राम रावण को वध किया, ऐसे ही मेरा अंदर में जो रावण है उसको आप वध करिए। और दूसरा जो है ये जो नौ शिक्षा है माधवाचार्य की, ऑलमोस्ट इस शिक्षा को महाप्रभु ने लेके हमें फिर सिखाए। और तीसरा एक चीज रह गया था जो कि समी वृक्ष के बारे में, समी वृक्ष को आज भी पूजा होता है, इस वृक्ष में पांडव लोग जो है पांच ब्रदर्स जो है अपनी जो अस्त्र शस्त्र जो है बांधकर उस वृक्ष में रखे थे, और आज के दिन उनकी जो वनवास जो है वो समाप्त हुआ और उस समीवृक्ष से उस शस्त्र लेकर गए थे द्रौपदी को हाथ मांगने के लिए. नहीं नहीं नहीं, ये द्रौपदी का नहीं, मैंने दिस इज द डे व्हेन देयर इनकॉग्निटो एग्जाइल वाज फिनिश्ड ऑन द डे ऑफ विजयदशमी. सो वेरी ऑस्पिशियस डे. ऐसे अगर हम शास्त्र में देखेंगे आज के दिन में बहुत सारे अनंत घटना घटी है, मगर ये कुछ घटना जो है हम आज याद किए. हरे कृष्ण. श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की, माधवाचार्य की, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री गौणताय की.